Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। जिंदगी बने आसान।
नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, जैसा हमारा विचार होता है वैसे ही हमारा मन होता है, और जैसा हमारा मन होता है वैसे ही हमारी हकीकत होती है। तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हमारी जो सोच है, हमारे जो संकल्प चल रहे हैं, क्या वो नकारात्मक है या सकारात्मक है। क्योंकि जैसा हम रिजल्ट चाहते हैं वैसे अगर हमारे संकल्प नहीं हैं तो आप कभी भी रिजल्ट अच्छा नहीं पाएंगे। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर गिरीश पटेल जी। ओम शांति।
नमस्कार,
वेलकम टू आवर शो। डॉक्टर साहब, हमारी पूरी सीरीज चल रही है कि किस तरह से मेंटल डिजीज़ से अगर हमें बाहर निकलना है तो सबसे पहले तो मेडिकेशन कैसे हेल्प करता है, साथ ही साथ राजयोग मेडिटेशन किस तरह से हेल्प करता है। अब मैं आज ऐसी कोई चर्चा करना चाहती हूँ, ऐसी कोई डिजीज की जिसके बारे में हमने अभी तक कवर अप नहीं किया।
परफेक्ट। हाँ, जैसे पिछले कुछ एपिसोड्स में नहीं, आगे अगर हमने चर्चा जो की सारी बातें है ना, कि एंग्जाइटी क्या होती है, डिप्रेशन क्या है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या है, सिक्सोफ्रेनिया क्या है, और एक बहुत बड़ी डिजीज़ है कि जिसको काफ़ी गहराई से समझना ज़रूरी है, उसकी ट्रीटमेंट भी बिल्कुल विशेष है, यूनिक है।
ओके।
वह है बाइपोलर डिजीज, या तो कहते मैनिक डिप्रेशन।
ओके।
अच्छा, अभी प्रश्न आता है कि वे क्या है,
भी शब्द exactly, बड़ा वो बीमारी एग्जैक्टली है क्या।
हाँ, जैसे शब्द बड़ा लगता है कि भी जैसे नाम ही है कि मैनिया और डिप्रेशन। मैनिया मतलब कि भी कुछ समय तक वह व्यक्ति एक ऐसी स्थिति में होता है कि जो स्थिति 5 दिन चल सकती है, 10 दिन चल सकती है, 2 महीना भी चल सकती है, कि जिसमें वो खूब काम करेगा, वो माइंड उसका बहुत फास्ट चलेगा, वो बहुत लगेगा मैं बहुत बड़े बड़े निर्णय कर सकता हूँ, मैं सुपर पावर हो गया हूँ, है ना, मेरे में खूब शक्ति आ गई है। एक बहुत बड़ा उसका सिम्टम है, वो सोचेगा मुझे नींद की जरूरत नहीं है।
Okay.
है ना, उल्टा मेरे लिए काम कम है, मुझे ज्यादा काम दो। ऐसे है ना, मतलब वो एक फेज होता है, हम चर्चा करेंगे उसकी, कि मेनिया में फिर एक साइकिल के रूप में वो डिप्रेशन में चला जाता है।
ओके।
हाँ, ऑटोमेटिक होता है। हम जो मेनिया है ऑटोमेटिक अगर ट्रीटमेंट नहीं की जाए तो एकदम निराश हो जाएगा, अभी कुछ नहीं करना है, वो सारे डिप्रेशन के लक्षण होंगे।
ओके।
जब डॉक्टर के पास अगर वो डिप्रेशन के फेज में गया और डॉक्टर ने उसको ठीक से पूछा नहीं तो ही लगेगा कि इसको डिप्रेशन है। पूछने पे ही पता चलेगा कि भी उसको आगे कभी ये मेनिया के फेज में भी वो गया था।
okay.
है ना, तो उस समय सारे जब ने चर्चा की नहीं, सारे डिप्रेशन के लक्षण होंगे, तो ना इसको कहा मैनिक डिप्रेशन, या तो इसको नाम दिया बाइपोलर डिजीज
जी।
है ना, कि भी 2 पोल्स में होता है उसका जो मन है, उसका स्टेट ऑफ माइंड, वो 2 पोल्स में, कुछ समय एक्साइटमेंट में है, कुछ समय डिप्रेशन में है ना, तो इसलिए इसको बाइपोलर डिजीज कहा। इसको okay. मैं कहता हूँ शेयर मार्केट डिजीज कि शेयर मार्केट में जो समझदार लोग हैं कि जब वो बहुत बूम पे जाता है ना, तब जिनको अक्कल नहीं है वो शेयर मार्केट में अंदर जाते हैं।
okay.
कि भी अभी कमाने का है, लेकिन जो समझदार है ना उसे बाहर निकलता है, अपने सारे शेयर्स बेच देता है।
okay.
क्योंकि उसको मालूम है कि अभी वो डाउन होने वाला है, 100% होगा ऐसे, है ना।
okay.
तो ऐसे मैं उनको ऐसे समझाता हूँ जिनको थोड़ा भी नॉलेज है कि भी आपकी बीमारी अप्स एंड डाउन्स होती है, सीजन्स की तरह भी बोल सकते हैं।
okay.
तो इसको अच्छे, क्योंकि इसकी पूरी ट्रीटमेंट अलग है,
अच्छा,
साइकोथेरेपी अलग है, हर प्रकार से यह बीमारी को, एक तो अगर क्लियर कट है तो मुश्किल नहीं है।
ओके।
अगर क्लियर कट नहीं है तो उसको समझना जरूरी होता है
जी,
है ना, क्योंकि इसके कई प्रकार भी है ना, डिफरेंट प्रकार है इसके। जैसे देखो, आपको मैं बता दूं उसके प्रकार कैसे
जी,
कि अभी एक तो यह है जिसको कहा बाइपोलर 1
जी,
अर्थात कि जो मैंने बताया ना कि वो एकदम हुबहू ऐसा ही चित्र दिखाई देगा।
ओके।
कि पेशेंट एक्साइटमेंट में आया, डिप्रेशन में गया, फिर से एक्साइटमेंट।
बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस बीमारी के अंदर में एक्सट्रीम्स में जाते हैं।
हाँ, बस
या तो एक्सट्रीम हाई फेस करते हैं या तो एक्सट्रीम लो
होता है। वो बाइपोलर वन है।
Okay.
कि जो कहेंगे हूबहू जिसको क्लासिकल पिक्चर कहेंगे
जी,
लेकिन अभी सब क्लासिकल नहीं है।
बिल्कुल बिल्कुल।
जैसे अभी दूसरा इसमें है कि बाइपोलर टू ना, बाइपोलर टू ऐसा है कि जिसमें व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है
जी,
उसका डायग्नोसिस हो सकता है कि डिप्रेस्ड है ना, लेकिन वो ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता है।
ओके।
वो पूछने पे मालूम पड़ेगा। अगर डॉक्टर ठीक से प्रश्न नहीं पूछेगा तो ये सोचेगा कि हाँ डिप्रेस था, फिर ठीक हुआ, वापस आए डिप्रेशन हुआ, लेकिन ये पूछना पड़ेगा कि कोई दवाई नहीं की, वो फेस चल रहा था या कुछ मामूली कुछ किया है और ऑटोमेटिक वो ठीक हो गया, कुछ समय एकदम अच्छा रहा 100% नॉर्मल, फिर से वो डिप्रेस्ड हो गया।
ओके।
है ना, तो इसको कहा बाइपोलर टू।
ओके।
है ना, ऐसे एक और भी है कि जिसको कहा कि भी बाइपोलर हाफ।
ओके।
वो क्या है कि एक है ना, होता है कि वो डिप्रेशन में भी नहीं गया। एक टेक्निकल शब्द है, बड़ा सरल सा, डिस्थाइमिया।
ओके।
ना, डिस्थाइमिया क्या है कि आज कई लोग है, देखना काफी लोग है कि जो कभी डॉक्टर के पास इसके लिए नहीं जाएंगे कि उनको लगता है कि भी शक्ति नहीं है, है ना, अच्छा नहीं लगता है।
ओके।
जीवन चल रहा है ना, हम खींच रहे हैं, कैसे भी दिन कट रहे हैं
जी।
वो लोग नॉर्मल है, सह तो जॉब भी कर रहे हैं, अपना परिवार को भी संभाल रहे, लेकिन जो जीवन की एक सामान्य स्थिति
खुशी होती है,
खुशी या तो सामान्य स्थिति
जी,
उसे थोड़े से वो डाउन है।
ओके।
और एकदम ठीक हो जाते हैं, कुछ समय ठीक रहेंगे, फिर से वो स्टेज में आएंगे। है ना, वो एक प्रकार है।
ओके।
बहुत सारे इसमें कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इतना तो मैं इसलिए बताता हूँ कि दर्शक नहीं, नहीं दर्शक भाई उनको पता चले कि भी ये होता है ना, तो कहीं ट्रीटमेंट से अच्छा हो सकता है।
करेक्ट।
जैसे हमको पता चल कि इसकी ट्रीटमेंट है।
बिल्कुल।
आज देखो हाई कोलेस्ट्रॉल वो एक प्रकार से बीमारी नहीं है।
करेक्ट
है ना, लेकिन डॉक्टरों को पता है कि कोलेस्ट्रॉल हाई है तो आपको हार्ट की बीमारियां बढ़ेगी।
करेक्ट।
तो आज आप देखो बहुत सारे लोगों को वो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिसिन है उनकी प्रिस्क्रिप्शन में।
करेक्ट।
है ना, उसको वो बीमार नहीं है। तो ऐसे यहाँ अगर कहीं पता चले ना तो बहुत, फिर वो एक्सट्रीम नहीं हो, जैसे बोलो ना बाइपोलर हाफ
जी,
वो तो लोग पूरा जीवन ऐसा बीत जाता है उनका।
अच्छा।
परंतु ये पता चले कि ट्रीटेबल है।
बिल्कुल।
तो बहुत अच्छा है। और ऐसे केसेस में अगर ट्रीटमेंट ना हो और कभी कुछ तनाव आ जाए, एक्साइटमेंट आ जाए, तो पूरे रूप का जो बाइपोलर वन है ना, ऐसी बीमारी में भी वो आ जाएंगे।
अच्छा।
तो उसको प्रिवेंट करने के लिए फेस को भी ट्रीट करना अच्छा है। कि एक होता है ना हाइपोमेनिया।
ओके।
हाइपोमेनिया क्या है कि व्यक्ति बहुत अच्छा उमंग उत्साह में, वो एबनॉर्मल नहीं है। कहते बहुत जो सक्सेसफुल लोग है ना वो हाइपोमेनिक थे, भी नेपोलियन हाइपोमेनिक था।
ओके।
कि वो एबनॉर्मल नहीं है लेकिन उसमें ज्यादा ही ऊर्जा है।
ओके।
ना बहुत कुछ काम कर लेते, उसमें कैपेसिटी वो कर लेता है और वो फेस हमेशा चला तो अच्छा है। परंतु ऐसा हो कि कोई हाइपोमेनिया में गया, नॉर्मल हो गया, फिर से हाइपोमेनिया में आया, नॉर्मल हो गया, तो वहां भी कहीं अगर समझदारी से ट्रीटमेंट की जाए तो भी वो बहुत अच्छा है।
ओके।
तो मेन चीज ये है। दूसरा एक कहीं होता है रैपिड साइक्लिक, कि वो एक दो दो दिन में चेंज होता रहता है। दो दिन में डिप्रेशन, दो दिन में एक्साइटमेंट, दो दिन में डिप्रेशन, दो दिन में एक्साइटमेंट। दूसरा एक कहा है मिक्स्ड। इवन पेशेंट, मेरी एक पेशेंट है खुद बोलती है कि डॉक्टर दोनों है अभी शायद मेरे में एक्साइटमेंट भी है, डिप्रेशन भी है
जी।
तो एक मिक्स्ड स्टेज भी होती है। ओके। दिस इज नॉट टेक्निकल थिंग, जो हमें लोगों के लिए काम की बात है, इसलिए मैंने बताई कि भी ऐसा हो ना तो ट्रीटमेंट हो सकती है।
Okay.
और वो पूरा अलग है
जी।
उसकी जो मेडिसिन है वो एकदम डिफरेंट मेडिसिन है और मिरेकल कर सकती है।
डॉक्टर साहब, कुछ हद तक हमने जान लिया कि इसके प्रकार क्या क्या है। अब मैं जानना चाहती हूँ कि बीमारी होती क्यों है, क्योंकि अगर ये पता चल जाए तो हम कहीं ना कहीं उन बातों से ही परहेज कर लेंगे जिससे ये बीमारी ना हो जाए।
ऐसे नहीं, हर बीमारी में है, तो ये जेनेटिक भी है काफी तक।
अच्छा।
है ना, कि भी वो जीन्स भी एक उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कुछ कुछ केसेस में जब वो डिप्रेस्ड होता है पेशेंट, हम एंटी डिप्रेशन देते हैं, पर देने तो पड़ेंगे, परंतु वो प्रीडिस्पोज्ड है इसको,
मतलब
कि भी उसमें वो जीन्स है।
अच्छा,
कि नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल कि भी मेरे फादर को डायबिटीज था तो मुझे भी होने की संभावना है ना।
करेक्ट।
तो ऐसे अगर घर में ये फैमिली हिस्ट्री है तो उसको ये होने की संभावना है।
बिल्कुल।
तो अगर वो प्रीडिस्पोज है तो जब एंटी डिप्रेशन देते हैं तब भी कोई लोग एक्साइटमेंट में चले जाते हैं।
अच्छा।
कि मतलब ट्रीटमेंट तो करनी पड़ेगी, ये नहीं कहेंगे कि नहीं करनी है ट्रीटमेंट। और एक जो मैं थोड़ा समझता हूँ कि ये जो बीमारी है ना, कहीं व्यक्ति ने बहुत है ना अपने इमोशंस को सप्रेस किया है।
अच्छा।
अभी अगर स्पिरिचुअली हम सोचे तो ये पास्ट बर्थ का भी हो सकता है।
अच्छा।
नहीं कि भी पास्ट बर्थ में भी कोई ऐसी घटना हुई जिसको उसने जबरदस्ती दबा के रखा है। और जब मौका मिलते वो एक जैसे कि नहीं पिस्टन की तरह उछल करके बाहर आती है।
अच्छा।
और व्यक्ति एक्साइटमेंट में आता है, ये जन्म का भी हो सकता है।
ओके।
कि नहीं वो सप्रेस कर रहा है, उसको मालूम भी नहीं है, शायद वो तो हो गया अनकॉन्शियस में, उसको पता नहीं कि मैं कर रहा हूँ।
ओके।
कि अभी अनकॉन्शियस में हुआ, कैसे ज्वालामुखी फटता है, ऐसे नहीं एक स्टेज आ सकती है कि तभी वो पूरा बाहर आए और वो व्यक्ति एक्साइटमेंट में चला जाए।
अच्छा। तो ये भी पॉसिबिलिटी है।
जैसे देखने जाओ तो भी साइकोलॉजिकल रीजंस के रूप में ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है।
ओके।
यहाँ भी अल्टीमेटली तो केमिकल्स को कहते हैं कि भी फाइनली वो केमिकल डिस्टर्बेंस हुआ।
करेक्ट।
और वो अप्स एंड डाउन्स उसके अंदर हो रहे हैं।
करेक्ट। डॉक्टर साहब, अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रही है, एक्सट्रीम्स में व्यक्ति जा रहा है, तो इस बीमारी के साथ में और भी कोई बीमारी होने के भी चांसेस हो जाते हैं कि बहुत, मतलब दो बीमारियां एक साथ हो गई एक व्यक्ति को?
नहीं नहीं, वो तो ऐसे तो फेज में आता है वो।
करेक्ट।
लेकिन अभी इसमें जैसे बोलते कि और प्रॉब्लम ये है कि वो मेनिया के फेज में बहुत कुछ कर सकता है।
अच्छा।
किसको 1 करोड़ का चेक भी साइन करके दे देगा।
अच्छा।
बहुत बड़ा खर्चा भी कर देगा कहीं।
ओके।
है ना, वो भी डॉक्टर तो हमको समझ में आता है, जब पेशेंट बहुत सारी गिफ्ट लेके आता है ना, तो थोड़ा आप देखो तो मालूम पड़ता है कि शायद मेनिया में है।
ओह।
है ना, वो अगर हम समझ देखे उस रूप से हम देखे, ऐसा नहीं कि तो गिफ्ट लेके आया, लेकिन हो सकता है कि वो मेनिया में है उस समय। तो उसको मार भी सकता है वो मेनिया के फेस में।
ओके।
है ना, सुसाइड भी कर सकता है। तो एक तो वो उसके नेगेटिव पहलू है ना, फिर औरों को डिस्टर्ब करेगा, और क्योंकि ये साइकिल के रूप में चलना ही है तो इसके कारण उसको स्टेबल करना बहुत जरूरी है।
ओके। डॉक्टर साहब, हमने ये भी जान लिया कि इसके प्रकार क्या है,
कॉजेस
क्या है, वो भी जान लिया। अब मैं जानना चाहती हूँ कि इस बीमारी के अंदर में और क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, जिससे पता चले कि इस बीमारी में आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है।
कि भी हमको यही देखना है कि भी व्यक्ति अगर सपोज अभी मेनिया में है तो हाइपोमेनिया तो अच्छा लगता है, और कोई हाइपोमेनिया में लंबा समय भी रहे तो शायद तो ट्रीटमेंट कभी भी नहीं करेगा।
अच्छा।
वो सुपर नॉर्मल भी हो सकता है कि भी वो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसका वो फेज नहीं आया कभी। परंतु अगर वो मेनिया में गया, ज्यादा ही खर्चा करने लगा, ज्यादा ही बातें करने लगा, एबनॉर्मल होने लगा, है ना, बहुत शॉपिंग करेगा अननेसेसरली, जो चीज की जरूरत ही नहीं है उसे, तो आप जो कहते हैं ना, एक प्रकार से सिम्टम हो गया।
करेक्ट।
है ना, बहुत कुछ इकट्ठा करेगा, सोएगा ही नहीं, चलता रहेगा, चलता रहा, जब 25 किलोमीटर भी चल दिया वो बोलेगा मैं थका ही नहीं। है ना, ये सब लक्षण है मेनिया के।
ओके। डॉक्टर साहब, अब मैं जानना चाहती हूँ कि क्या इस बीमारी के थेरेपीज हैं जिसके थ्रू हम इससे क्योर हो सकते हैं?
कि इसमें जो इसका कहेंगे थंब रूल है कि अगर 2% 1% आप डिप्रेस रहे तो चलेगा।
ओके।
डॉक्टर को ये नहीं बोलो कि मुझे 100% नॉर्मल कर दो, क्योंकि ये स्टेज है ना आपकी जीवन भर चलेगी, फिर आपको कोई मेडिसिन की भी जरूरत नहीं है।
अरे वाह।
है ना। परंतु आपने सोचा कि मुझे 100% नॉर्मल होना है, थोड़ा भी ऊपर गए तो एकदम हाई में भी जा सकते हो।
ओके।
तो इस बात को एक समझना है, और दूसरा भी ये समझना है कि जब भी वो फेज आता है ना तो आप में कहीं हाई एनर्जी आ जाती है।
ओके।
है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी आ जाती है, तो उसको यूज करना है। तो थोड़ा भी ऐसा लगे ना तो सिंपल चीजें मैं बताता हूँ कि लंबा वॉकिंग करो।
ओके,
एकदम मेनिया में नहीं लेकिन थोड़ा सा वो स्टेज में है। तो अगर व्यक्ति सचमुच लॉन्ग वॉक्स करता है, अच्छे से एक्सरसाइज करता है ना, तो वो ऊर्जा यूज हो जाएगी। दूसरा इसमें जो हेल्प करता है कि रियलाइजेशन, बहुत मुश्किल है लेकिन जब वो पेशेंट नॉर्मल होते हैं तब उनको समझा करके ये एक रियलाइजेशन लाया जाए कि देखो मुझे ये तकलीफ है, तो थोड़ा भी ऊपर में होने लगूं तो मुझे तुरंत अपने आप को कुछ करना है। और इसका सबसे अच्छा तरीका है कि पेशेंट खुद निर्णय नहीं कर पाएगा, उसके जो आसपास लोग हैं, परिवार के सदस्य, मित्र है, मैं उनको ये कहता हूं कि तुमको पूरा उन पर डिपेंडेंट होना है ना। आप बताओ कि भी आपका सबसे बड़ा वेलविशर कौन है। तो ना पेशेंट कहते कि भी मेरे पति पे मुझे सबसे ज्यादा विश्वास है, कोई कहता है कि भी मुझे मेरी माँ पे सबसे ज्यादा विश्वास है, तो कहेंगे बस वो आपको जब कहे कि अभी तुम मेनिया में हो तो इमीडिएटली कूल डाउन या मेडिसिन लो प्रॉपरली। कई बार तो कुछ तरीके होते, एक्चुअली एक फिल्म एक्टर, इसने कई सीरियल्स किए, उसको भी ये है ऐसे बीमारी, तो एक तो अननोइंगली दिया पहले, फिर उसको भी पता चला थोड़ा बहुत कि मुझे लेना चाहिए तो लेने लगा, लेकिन फिर बोलता इतना डोज नहीं लूंगा।
ओके,
भी मैं तो थोड़ा ही लूंगा, तो जैसे उसका डोज कम करने गए तो उसको मेनिया हो जाता है ना। लेकिन फिर एक अच्छा मौका मिला कि उसके फादर को भी कुछ प्रॉब्लम थे और कुछ डिफरेंट प्रकार के प्रॉब्लम, तो उसके लिए लोग आए तो बोले उसका फादर को मैंने समझ के ट्रीटमेंट, लेकिन तब मैंने सोचा अभी ये मौका है इसको थेरापी देने का।
करेक्ट।
तब मैंने उसको बताया देखो बेटे अभी तुमको जज करना है कि ये तुम समझ में नहीं आता है, नहीं ना, माँ समझती है बरोबर कि कब तुम मेनिया में जाते हो।
करेक्ट,
है ना। तो जब भी माँ कहे तो तुमको लेना ही है, मेरे कोई गोली ज्यादा नहीं है।
करेक्ट,
थोड़ी बड़ी होती, 1 ग्राम की गोली होती, मोटी सी दिखती है, तो भी इतनी मोटी गोली है तो कहा कि भी और कैसे हम लेते हैं, कि भी 1 ग्राम तो आप लेते ही हो, भी एक रोटी भी खाओ तो भी तो कितना है,
बिल्कुल,
है ना। तो ये सोचना है कि स्टेबिलाइजर है।
ओके।
और तुमको रेगुलर लेनी है, और इसलिए लेनी है क्योंकि भी देखो मदर को दो दो पेशेंट को संभालना है।
करेक्ट।
तो इसलिए तुम सोचो कि अभी मुझे वो समस्या नहीं करनी,
बिल्कुल,
तो लेने लगा, है ना। कहीं पे कुछ ऐसा हो सकता है कि जो चीज उसको मोटिवेट कर जाए।
करेक्ट।
दूसरा, अगर उनके कुछ डीप रूटेड कॉन्फ्लिक्ट्स है तो भी फाइंड आउट कर सकते हैं।
ओके।
पूरा अगर जाने ना तो पता चल सकता कि कहां उन्होंने अपने सप्रेशंस को सप्रेस किया, उनके जो इमोशंस थे अगर उन्होंने कहीं सप्रेस किया खूब तो भी वो इस रूप में आ सकते हैं।
डॉक्टर साहब, जितना मैं समझ पा रही हूँ, मुझे ये समझ में आया है कि बेसिकली बाइपोलर डिजीज तब होती है जब आप किसी भी इमोशन को बहुत ज़्यादा सप्रेस करके रखेंगे, और आई बिलीव हर इंसान का एक बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए जिससे वो एक्सप्रेस करें, भले वो कोई भी हो, चाहे वो पति हो, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे वो भगवान हो, सबसे बेस्ट भगवान होंगे, क्योंकि वो किसी को जाकर आपकी बात बताएंगे नहीं,
ये तो एक्सपेक्ट नहीं करते,
कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करते,
लोग एक्सपेक्ट करते
हैं। एग्जैक्टली, और वन साइडेडली आपकी बातें सुनेंगे वो। तो आई थिंक द बेस्ट रिलेशनशिप जो आप कर सकते हैं वो भगवान के साथ कर सकते हैं। और अगर बाय चांस आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा अकेलापन हो रहा है तो आप, हो सकता है कि आप बाइपोलर डिजीज के शिकार भी हो।
अकेलापन का लगा है, ये सप्रेशन जेनेटिक है, ये ज्यादा देखो
जी
कि कोई इमोशंस को आप सप्रेस कर रहे
हैं। सप्रेस करेंगे तो उसको किसी ना किसी को आपको एक्सप्रेस करने की जरूरत है। और मेरे हिसाब से डॉक्टर साहब, जो बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट लोग होते हैं उनको ये बीमारी होने के चांसेस होती है,
हर बीमारी।
अच्छा।
सिज़ोफ्रेनिया होने की भी संभावना बढ़ जाएगी, डिप्रेशन होने की संभावना बढ़ जाएगी। और अभी अंतर्मुखता है ना, भी आध्यात्मिकता में तो अच्छा माना गया, लेकिन आध्यात्मिकता में अंतर्मुखता और पर्सनालिटी अंतर्मुखी, उसमें फर्क है।
अच्छा।
आध्यात्मिकता में अंतर्मुखता यह है कि जब मैं चाहूं तभी अंतर्मुखी होके अच्छे से ध्यान कर सकूं, मेरा मन यहाँ वहां न चला जाए, मैं लंबा समय भी ध्यान कर पाऊं, है ना। और जो साइकोलॉजी में कहा वो ऐसे कि जो लोगों को बात करना अच्छा नहीं लगता है, जो लोग अकेले ही रहते हैं, बोलने के लिए को तो बोल नहीं पाते, अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं, वो फ्रेंड नहीं बनाते, जरूरत होने पर भी नहीं बनाते, अभी आध्यात्मिकता में जो इंट्रोवर्टनेस है वो अलग है कि उसमें चाहे मैं रोज 2 घंटा भी ध्यान करता हूँ, परंतु आवश्यकता है तो मैं जाके फ्रेंड्स बनाऊंगा,
बिल्कुल
आवश्यकता है तो मैं जाके लोगों को मिलूंगा,
बिल्कुल
ऐसे तो है ना, ये एक डिफरेंस है। और वो जो साइकोलॉजिकल इंट्रोवर्टनेस है वो बुरा है।
ओके।
कि अपने बारे में ज्यादा सोचना, किससे मिलना नहीं, बातें नहीं करना, फ्रेंड्स नहीं बनाना, सोशलाइज नहीं करना, तो ऐसे लोगों को हर प्रकार की साइकोलॉजिकल बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है।
क्योंकि कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी के बारे में ये एक भ्रांति होती है कि ये लोग ज्यादा मौन में रहते हैं, पर रियलिटी तो ये है कि मन के मौन की बात हो रही होती है। तन का मौन करने से कुछ नहीं होने वाला, आपका मन थोड़ी देर के लिए शांत होगा पर वो गारंटी नहीं है कि आपका मन पूरी तरह से मौन में है।
परफेक्ट।
शायद वो डबल फास्ट तरीके से चल रहा हो जब आप मौन में होते हैं, तो ये भी एक भ्रांति को आज आपने क्लियर किया है डॉक्टर साहब।
इसको कहेंगे ना सॉलिट्यूड,
करेक्ट,
तो हिंदी में कहेंगे एकांतवास।
जी,
एकांत में मैं रह सकता हूँ, अपना ही मेडिटेशन करता हूँ, गहरी शांति का अनुभव करता हूँ, जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ।
करेक्ट।
आवश्यकता है तो मैं लोगों को मिल सकता हूँ।
बिल्कुल।
और इसीलिए आध्यात्मिकता में नहीं, जो आध्यात्मिक सेवा करने की बात कही कि औरों को भी आप ये ज्ञान दो, उसके कई फायदे। मैं तो इस नजरिए से इसको देखता हूँ। कहते हैं कि जो हम सुनते हैं भूल जाते हैं।
करेक्ट।
जो हम रिपीट करते हैं वो 50% याद रहता है, परंतु जो हम औरों को सुनाते हैं वो 80% याद रहता है।
ओके।
तो आध्यात्मिकता में हम औरों को जो ज्ञान सुना वो ज्ञान सुनाते हैं तो वो हमको 80% याद रहता है।
बिल्कुल
ना, मेरे बहुत सारे सेमिनार्स वो फ्री होते हैं कि जिसमें पेमेंट नहीं दी जाती है।
जी।
तो भी मैं करता हूँ इसलिए कि भी वहां हम आध्यात्मिक ज्ञान सुनाने वाले हैं, और उल्टा अच्छा है।
Correct.
क्योंकि हमारा पक्का होगा।
बिल्कुल।
हम औरों को बता रहे हैं तो हमारा पक्का होगा, हमारे जीवन में भी तनाव आएंगे तो तब हम उसको स्टेबिलिटी से मैनेज कर पाएंगे।
साथ ही साथ मैं खास करके इस चीज को और तवज्जो देना चाहूंगी कि अगर आप स्प्रेड करेंगे तो उनसे जो दुआएं आपको मिलेंगी, उनके अंदर जो बदलाव आएगा, उससे आपकी आपके मन को भी बहुत ज्यादा शांति महसूस होगी, और आप किसी भी बीमारी से आपको बाहर निकलने में वो मदद करेगा।
तो बीमारी होगी ही नहीं।
बिल्कुल, कोई बीमारी होने का कोई चांस ही नहीं।
दिस इज वंडरफुल कि नहीं, औरों की दुआएं हमको मिलेगी।
बिल्कुल,
भल कोई बोले नहीं।
क्योंकि डॉक्टर साहब मैंने एक बात देखी है कि भले ही तन की बीमारी कितनी भी हो जाए, इंसान उससे लड़ने के लिए अपने आत्मविश्वास को कभी तोड़ता नहीं है, लेकिन अगर मन की कोई बीमारी हो जाए तो इंसान बहुत हताश हो जाता है।
बिल्कुल। हाँ।
क्योंकि उन्हें लगता है कि जो मेन चीज है, जो हमारे पूरे बॉडी को फंक्शन करती है, हमारा मन, अगर वही बीमार है तो इंसान बहुत ही ज्यादा हताश महसूस करता है।
हाँ।
ऐसे पल पे अगर कोई डॉक्टर या स्पिरिचुअली भी भगवान आकर अगर किसी व्यक्ति के थ्रू आपको कोई मैसेज दे रहा है तो ये उनके लिए एक नई ऊर्जा प्रदान करती
है। स्पेशली जो मानसिक बीमारियां हैं।
हाँ जी।
एक तो उनको सुनने की।
ओके।
डायग्नोसिस तो 4 मिनट में होता है कि कई बार सिर्फ उसको है ना एक अच्छे से क्वेश्चनर दे दो।
जी।
कोई अगर प्रामाणिकता से वो क्वेश्चनर को भर दे तो भी 95% डायग्नोसिस पे आ सकते हैं।
बिल्कुल,
है ना। लेकिन फिर भी डॉक्टर पेशेंट की बात को सुनना है।
जी।
क्योंकि उसको पक्का होगा कि भी हमने सुना।
जी बिल्कुल।
और दूसरा जो मैंने देखा है कि उसको कन्विंस करना।
बिल्कुल, कि वो ट्रीटमेंट की तरफ आगे बढ़े,
क्योंकि वो इनसिक्योर है।
बिल्कुल।
और बहुत सारी बातें।
बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज हमने बहुत सारी बातें जानी, जिसमें मुझे सबसे डीप बात ये लगी कि अगर हमें बाइपोलर डिजीज से बाहर निकलना है, जिस पर हमारा पूरा एपिसोड चला है आज, अगर इस बीमारी से बाहर निकलना है तो हमें सबसे पहले तो मन के मौन की तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ना कि तन का मौन। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि एक किसी व्यक्ति को अपनी पूरी बातें एक्सप्रेस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सप्रेस करके रखेंगे फीलिंग्स को तो ये बीमारी होने की चांसेस आपको बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो।
नमस्कार।
ओम शांति। दोस्तों, हमारी पूरी सीरीज चल रही है कि किस तरह से मन की बीमारियों से आप बाहर निकल सकते हैं। इस सीरीज में आज का एपिसोड हमने डील किया बाइपोलर डिजीज के साथ में। हमने ये जाना कि अगर हमें इस बीमारी से बाहर निकलना है तो कहीं ना कहीं, या फिर इस बीमारी से बचना है तो कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होने की ज़रूरत है। नॉट नेसेसरी कि आप हर व्यक्ति को अपनी फीलिंग्स बताएं, पर कोई एक व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में ज़रूर होना चाहिए जिस पर आप अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह से लेट गो कर सके। ज़रूरी नहीं है कि कोई मनुष्य हो, वो भगवान भी हो सकता है। अगर आप भगवान को भी अपना साथी बनाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि वो आपके लिए सबसे बेस्ट फ्रेंड बन सकता है और आपकी बातों को कभी भी यहाँ से वहाँ होने नहीं देगा। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम का एंड करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में, जिंदगी बने आसान। ओम शांति।